संबंध ज्ञान की परानिष्ठा प्राप्त करने के लिए किन किन साधन सामग्रियों की आवश्यकता है, इस विषय को आगे के 3 श्लोकों में बताते हैं। बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन् विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च विवेक्तसेवी लघ्वाशी यतवा कायमानस ध्यानयोग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रित अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमोच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो विशुद्ध सात्विकी बुद्धि से युक्त वैराग्य के आश्रित एकांत का सेवन करने वाला और नियमित भोजन करने वाला साधक धैर्य पूर्वक इंद्रियों का नियमन करके शरीर वाणी मन को वश में करके शब्दादि विषयों का त्याग और राग द्वेष को छोड़कर निरंतर ध्यानियों के परायण हो जाता है, वह अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह से रहित होकर एवं ममता रहित तथा शांत होकर ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। व्याख्या। बुद्ध्या विशुद्धया युक्त है, जो सांख्य योगी साधक परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है उसकी बुद्धि विशुद्ध अर्थात सात्विकी हो। 18वें अध्याय के 30वें श्लोक में उसकी बुद्धि का विवेक साफ साफ हो, उसमें किंचन मात्र भी संदेह न हो। इस सांख्य योग के प्रकरण में सबसे पहले बुद्धि का नाम आया है। इसका तात्पर्य यह है कि सांख्य योगी के लिए जिस विवेक की आवश्यकता है वह विवेक बुद्धि में ही प्रकट होता है। उस विवेक से वह जड़ता का त्याग करता है। वैराग्यम समुपाश्रित है। जैसे संसारी लोग राग पूर्वक वस्तु व्यक्ति आदि के आश्रित रहते हैं, उनको अपना आश्रय सहारा मानते हैं, ऐसे ही सांख्य योग का साधक वैराग्य के आश्रित रहता है। वह जन समुदाय स्थान आदि से स्वाभाविक ही निर्लेप होकर रहता है। लौकिक और पारलौकिक संपूर्ण भोगों से उसका दृढ़ वैराग्य होता है। विविक्त सेवी। सांख्य योग के साधक का स्वभाव उसकी रुचि स्वतः स्वाभाविक एकांत में रहने की होती है। एकांत सेवन की रुचि होनी तो बढ़िया है, पर उसका आग्रह नहीं होना चाहिए। माने एकांत न मिलने पर मन में विक्षेप हलचल नहीं होनी चाहिए। आग्रह न होने से रुचि होने पर भी एकांत न मिले प्रत्युत समुदाय मिले खूब हल्ला गुल्ला हो तो भी साधक उकताएगा नहीं, वह सिद्धि असिद्धि में सम रहेगा। परंतु आग्रह होगा तो वह उकता जाएगा, उससे समुदाय सहा नहीं जाएगा। अतः साधक का स्वभाव तो एकांत में रहने का ही होना चाहिए, पर एकांत न मिले तो उसके अंतःकरण में हलचल नहीं होनी चाहिए। कारण कि हलचल होने से अंतःकरण में संसार की महत्ता आती है और संसार की महत्ता आने पर हलचल होती है, जो कि ध्यान योग में बाधक है। एकांत में रहने से साधन अधिक होगा, मन भगवान में अच्छी तरह से लगेगा, अंतःकरण निर्मल बनेगा। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में सहायक होती है, परंतु एकांत में हल्ला गुल्ला करने वाला कोई नहीं होगा, अतः वह नींद अच्छी आएगी। वह किसी भी प्रकार से बैठ जाए तो कोई देखने वाला भी नहीं होगा, वह सब प्रकार से आराम रहेगा। एकांत में रहने से लोग भी ज्यादा मान बड़ाई आदर करेंगे। इन बातों को लेकर मन में जो प्रसन्नता होती है वह साधन में बाधक होती है, क्योंकि यह सब भोग है। साधक को इन सुख सुविधाओं में फंसना नहीं चाहिए, प्रत्युत इनसे सदा सावधान रहना चाहिए। लघुवासी साधक का स्वभाव स्वल्प नियमित और सात्विक भोजन करने का हो। भोजन के विषय में हित मित और मेध्य, ये तीन बातें बताई गई हैं। हित का तात्पर्य है भोजन शरीर के अनुकूल हो। मित का तात्पर्य है भोजन न तो अधिक हो न कम रहे, प्रत्युत जितने भोजन से शरीर निर्वाह हो जाए उतना भोजन करे। युक्ताहार विहारस्य 6:16। भोजन से शरीर पुष्ट हो जाएगा, ऐसे भाव से भोजन न करे, प्रत्युत केवल औषध की तरह क्षुधा निवृत्ति के लिए ही भोजन करे, जिससे साधन में विघ्न न पड़े। मेध्य का तात्पर्य है भोजन पवित्र होना चाहिए। धृत्यात्मानम नियम्य च, सांसारिक कितने ही प्रलोभन सामने आने पर भी बुद्धि को अपने ध्येय परमात्मा से विचलित न होने देना, ऐसी दृढ़ सात्विकी धृति के द्वारा इंद्रियों का दमन करे, इंद्रियों को मर्यादा में रखे। आठों पहर ये जागृति रहे कि इंद्रियों के द्वारा साधन के विरुद्ध कोई भी चेष्टा न हो। 18:33। यतवा काय मानस, शरीर वाणी और मन को संयत करना भी साधक के लिए बहुत जरूरी है। 17वें अध्याय के 14वें 15वें 16वें में यह विस्तार से बताया गया है। अतः वह शरीर से वृथा न घूमे, देखने सुनने के शौक से कोई यात्रा न करे, वाणी से वृथा बातचीत न करे, आवश्यक होने पर ही बोले, असत्य न बोले, निंदा चुगली न करे, मन से राग पूर्वक संसार का चिंतन न करे, प्रत्युत परमात्मा का चिंतन करे। शब्दादीन विषयांश त्यक्त्वा, ध्यान के समय बाहर के जितने संबंध हैं जो कि विषय रूप से आते हैं और जिनसे संयोग जन्य सुख होता है, उन शब्द स्पर्श रूप रस और गंध पांचों विषयों का स्वरूप से ही त्याग कर देना चाहिए। कारण कि विषयों का राग पूर्वक सेवन करने वाला ज्ञान योग का साधन नहीं कर सकता। अगर विषयों का राग पूर्वक सेवन करेगा तो ध्यान में वृत्तियां नहीं लगेंगी, वे वृत्तियां बहिर्मुख होंगी और उन वृत्तियों से विषयों का चिंतन होगा। राग द्वेषौ व्युदस्य च, सांसारिक वस्तु महत्वशाली है, अपने काम में आने वाली है, उपयोगी है, ऐसा जो भाव है उसका नाम राग है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में असत वस्तु का जो रंग चढ़ा हुआ है वह राग है। असत वस्तु आदि में राग रहते हुए कोई उनकी प्राप्ति में बाधा डालता है तो उसके प्रति द्वेष हो जाता है। असत संसार के किसी अंश में राग हो जाए तो दूसरे अंश में द्वेष हो जाता है, स्वाभाविक है। जैसे शरीर में राग हो जाए तो शरीर के अनुकूल वस्तु मात्र में राग हो जाता है और प्रतिकूल वस्तु मात्र में द्वेष हो जाता है। संसार के साथ राग से संबंध जुड़ता है और द्वेष से भी संबंध जुड़ता है। राग वाली बात का भी चिंतन होता है और द्वेष वाली बात का भी चिंतन होता है, इसलिए साधक न राग करे न द्वेष करे। ध्यान योग परो नित्यम, साधक नित्य ही ध्यान योग के परायण रहे, अर्थात ध्यान के सिवाय दूसरा कोई साधन न करे। ध्यान के समय तो ध्यान करे ही, व्यवहार के समय मानो चलते फिरते खाते पीते काम धंधा करते समय भी यह भाव सदा बना रहे कि वास्तव में एक परमात्मा के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। सर्वभूतेषु येनेकं भावं अव्ययम् इक्षते 18:20। अहंकारम बलं दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य, गुणों को लेकर अपने में जो एक विशेषता दिखती है उसे अहंकार कहते हैं। जबरदस्ती करके विशेषता से मनमानी करने का जो आग्रह होता है उसे बल कहते हैं। जमीन जायदाद आदि बाह्य चीजों की विशेषता को लेकर जो घमंड होता है उसे दर्प कहते हैं। भोग पदार्थ तथा अनुकूल परिस्थिति मिल जाए इस इच्छा का नाम काम है। अपने स्वार्थ और अभिमान में ठेस लगने पर दूसरों का अनिष्ट करने के लिए जो जलनात्मक वृत्ति पैदा होती है उसको क्रोध कहते हैं। भोग बुद्धि से सुख आराम बुद्धि से चीजों का जो संग्रह किया जाता है उसे परिग्रह कहते हैं। साधक उपर्युक्त अहंकार बल दर्प काम क्रोध और परिग्रह इन सब का त्याग कर देता है। निर्ममः, अपने पास निर्वाह मात्र की जो वस्तुएं हैं और कर्म करने के शरीर इंद्रियां आदि जो साधन हैं उनमें ममता न रखे, उनमें अपनापन न हो। अपना शरीर वस्तु आदि जो हमें प्रिय लगते हैं उनके बने रहने की इच्छा न होना निर्मम होना है। जिन व्यक्तियों और वस्तुओं को हम अपनी मानते हैं वे आज से 100 वर्ष पहले भी अपनी नहीं थी और 100 वर्ष के बाद भी अपनी नहीं रहेगी। अतः जो अपनी नहीं रहेगी उनका उपयोग या सेवा तो कर सकते हैं पर उनको अपनी मानकर अपने पास नहीं रख सकते। अगर उनको अपने पास नहीं रख सकते तो वे अपने नहीं है ऐसा मानने में क्या बाधा है। उनको अपनी न मानने से साधक निर्मम हो जाता है। जानता है असत संसार के साथ संबंध रखने से ही अंतःकरण में अशांति हलचल आदि पैदा होते हैं। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर शांति कभी पास में आती नहीं। फिर राग द्वेष न रहने से साधक हरदम शांत रहता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ममता रहित और शांत मनुष्य परमात्म प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। असत का सर्वथा संबंध छूटते ही उसमें ब्रह्म प्राप्ति की योग्यता और सामर्थ्य आ जाते हैं। कारण कि जब तक असत पदार्थों के साथ संबंध रहता है तब तक परमात्म प्राप्ति की सामर्थ्य नहीं आती।